है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी नहीं है, लेबर की पॉलिसी नहीं है, इखलाकियात ही नहीं है, तो फिर आपको पैसा किस चीज का चाहिए।
बहुत शुक्रिया आशर अजीम साहब, मैंने आपका टाइम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि, मगर मुझे वो एक कहानी याद आती है, मैं वो पूरी कहानी दोबारा भी आपको सुनाऊंगी जरूर, कि शेर आया शेर आया शेर आया, एक आदमी ने एक बार शोर मचाया, शेर आया शेर आया शेर आया, सारा गांव उसकी मदद के लिए आ गया, दूसरी बार उसने शोर मचाया, फिर सारे आ गए, तीसरी दफा चौथी दफा सारों ने कहा झूठ बोलता है और सच्ची मुझे शेर आ गया था, और फिर वो खा भी गया था। अनफॉर्चुनेटली पीपल हैव लॉस्ट देयर ट्रस्ट ऑन दीज पीपल, और अगर आप झूठ मूठ कहते हैं कि जी आप किससे मोहब्बत करते हैं और आपकी हमदर्दियां हैं, तो इसका मतलब है आप इल्यूजन में हैं, आप डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आपको पता ही नहीं कि हकीकत में क्या हो रहा है। और
मैं एक अपील सिर्फ करूंगा जी, आपके प्रोग्राम की वसादत से जो भी सुन रहा है, सारे काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म्स कर दीजिए ठीक तरह। आपके मुल्क में जैसे ही जुडिशरी और पुलिस का सिस्टम ठीक हो गया, और ये आप देखें, आपका मुल्क एक दूसरी डगर पे खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमीज भी बेहतर होंगी, सब कुछ, अवाम में पहले इंसाफ आना शुरू।
बहुत शुक्रिया सर, आपका ये वाला कॉल से ही आज का प्रोग्राम शुरू होगा। मैं आशर अजीम साहब आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं तो सिर्फ सच की तलाश में हूँ, आपने ये पैगाम कौम के नाम पे दिया है, बहुत खूबसूरत पैगाम है, और मैं सिर्फ इतना पैगाम देती हूँ कि अगर हमें जानों को और इज्जतों को महफूज करना है तो लोगों को वहशी मत होने दीजिएगा। ये प्रोग्राम लेम्फाई के तावन से हमने आपकी खिदमत में पेश किया, रकम पाकिस्तान भेजने के लिए हमारी रिक्वेस्ट है ये ऐप डाउनलोड कीजिए ऑन योर फोन एंड्रॉइड या एप्पल पे। अशर अजीम साहब का एहसान कि आप मेरे साथ शामिल हुए, मेरे ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमें इनकी कदर करना होगी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इन लोगों को सुनने के लिए अब तैयार नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन,
थैंक यू,
गॉड ब्लेस यू, यू आर वेरिंग ब्यूटिफुल कलर बाय द वे। इजाजत दीजिएगा, आई होप मेरी कोई बात आपको बुरी नहीं लगी, अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। यस, बहुत खामोशी तूफान का पेशखैमा हुआ करती होती है, ये भूख और प्यास इंसानों को वहशी बनाने के लिए बहुत काफी होती है। अभी इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, बिल्कुल आप अपने कॉमेंट्स दीजिएगा, वी डेफिनेटली लुक एट योर कॉमेंट्स, मगर ये प्रोग्राम्स गुफ्तगू के प्रोग्राम है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक मेरा आपका अल्लाह हाफिज।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दिया नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहन दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल एप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर 6478724900।
पाकिस्तान पैसे भेजना अब हुआ आसान, यूज लेम्फाई फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। कनाडा से पाकिस्तान पैसे मिनटों में पहुंचते हैं, बराह रास्त जिसको आप भेजना चाहें, बेहतरीन एक्सचेंज रेट और पैसे पहुंचे मिनटों में। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले और एप्पल स्टोर, कोड पाकिस्तान इस्तेमाल करने पे आपको मिले $10 का कैश बैक। अपने फोन से बराह रास्त बैंक अकाउंट में पैसे भेजना शुरू करें मिनटों में और बिना किसी फीस के। लेम्फाई
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जाता सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है,
मेरी सेविंग $350,
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना
भाई। बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है, और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मोईशत की तरक्की का जामिन,
आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यूब थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी, क्विक ट्रक ल्यूब 519-622-0660, quicktruckcube.com।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 सीआईबीसी ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। cibc.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। सीआईबीसी, एम्बिशंस मेड रियल।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-0241
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब और सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ व्हाइटनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 905-872-1100। कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉस और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसीलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, PR रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। khairamsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है।
BNK proudly brings you Big Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Midway. Mark your calendars for August 31st and September 1st. The first ever open-air concert with a tribute to the legendary Jagjit Singh by Mauza Ali Khan. Enjoy free parking at admission, the sponsorship, bus booking and limited VIP tickets. Contact us at 416-897-1683 or info@bnkevents.com.
mere nahi guzara to main tumhara
radio sansara music news and information messages and chat.
ویلکم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ساز و آواز آپ سن رہے ہیں 770 ایم ڈائل پر اور ای آواز ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے ہوسٹ عامر احمد اور ہمارے ساتھ ہیں شازیہ ملک صاحبہ. جناب اب سے لے کر تقریباً 8:15 بجے تک ہمارا اور آپ کا یہ پیار بھرا محبت بھرا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. اور آپ نے اگر ہمارے ساتھ جڑنا ہے تو ہمارا نمبر 4166201778. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں 770 کی آواز آپ کو جو ہے وہ اسٹیٹک فیل ہو رہی ہے تو آپ ایک نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 6478724900. بالکل میری کوئی سریلی آواز نہیں ہے, کوئی خوبصورت آدمی نہیں ہے سر. بس آپ 770 اگر آپ کو سننے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو میں نے آپ کو نمبر دیا 6478724900. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ eawaz.com, یہاں پر آپ ریڈیو سن سکتے ہیں, ٹیلی ویژن ہمارا دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے تمام ہی ایڈورٹائزرز کے نمبرز بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل جائیں گے. ہمارا یوٹیوب چینل ای آواز ٹی وی اینڈ ریڈیو, اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور اگر آپ کو پسند ہو تو اس کو شیئر بھی کیجئے. کامنٹس کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ اس میں کیا امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں. چلے جناب, شازیہ ملک صاحبہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے مسکرا رہی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کہتے ہیں
الحمدللہ.
عامر تم نے اتنا دل پہ لے لیا ہے, نہ اپنے آپ کو خوبصورت کہہ رہے ہو, آواز کہہ رہے ہو,
ختم ہو گیا.
نہیں اتنا بھی دل پہ لینا ہوتا ہے؟
دل پہ نہیں. اب لوگوں نے کہا کہ ابھی میرے بہت سارے میسجز مجھے ویکینڈ پہ ملے,
اچھا
ای میلز ملی, میسجز ملے, مجھے فونز بھی آئے.
اچھا
اب کہتے ہیں عامر بھائی آپ مطلب ماشاء اللہ, اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں.
ہاں اچھا
مطلب یو آلریڈی.
اچھا اسی لیے تمہاری کل شکایت آئی, دو لوگوں نے کہا کہ عامر بھائی ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتے, وہ صرف اپنے چاہنے والے جو تین لڑکے ہیں ان کا فون اٹھاتے ہیں.
دیکھیں یہ
ایک پتہ نہیں احمد محمد ہے, ایک وہ سعید صاحب ہیں, ایک اور کہتے ہیں وہ صرف اپنے چاہنے والوں کا اٹھاتے ہیں. وہ شازیہ جی جو باقی ہم کال کر رہے ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ انہوں نے آ کے عامر کی تعریفیں کرنی ہوتی ہیں. میں کیا وہی تو لفافہ دیا ہوا ہے اس نے. میں نے کہا آج میں آپ کو سچ بتا ہی دوں کہ عامر نے لفافہ دیا ہوا ہے.
تمام 770 کے لسنرز اور ای آواز ٹی وی کے دیکھنے والے ویورز وہ ریسپیکٹفل ہیں, سوا کب کی عزت ہے. اور کسی کا بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں فون نہ اٹھاؤں, فون ہمیشہ اٹھا لیتا ہوں, لیکن بس
صرف جس وقت عامر صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں.
تقریر تو کبھی بھی نہیں کرتا.
تقریر جب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ نہیں اٹھاتے, وہ کہتے ہیں کھلی بلی ایسا نہیں میں اٹھاؤں گا. لیکن
جاوید بھائی یاد آ جاتے ہیں تقریر کرتے وقت, عامر ٹیٹر, بس ایک دم عامر آ جاتا ہے اندر.
لیکن آپ اس کی بات ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو اس کے تین چانے والے ہیں ان کا یہ فون اٹھاتا ہے, وہ کسی کا نہیں اٹھاتا. صحیح آپ نے سمجھا, بالکل
چلے ہمارے وہ 1 ملین سے 3 ملین بنتے ہیں, پھر بھی زیادہ ہے.
وہی ہے عامر. بس بالکل دیکھو عامر, تم پتہ کیا ہے, میں نے تمہیں بڑی دفعہ کہا ہے پر تمہیں سیکھ نہیں آ رہی. میں نے تمہیں بڑی دفعہ کہا ہے منہ مت کھولا کرو, جیسے ہی تم کھولتے ہو تم پھنس جاتے ہو, ہے نا.
دیکھیں یار یہ وہ والی بات ہو گئی, وہ ڈائلگ تو مجھے پورا یاد نہیں ہے کہ وہ پتا نہیں ماں نے کہا پارو کو چھوڑ دو, پارو نے کہا یہ چھوڑ دو, اس نے کہا وہ چھوڑ دو, میں جینا چھوڑ دوں. یہی میری صاحب اگر میں بولا چھوڑ دوں یار, بابا بولیں گے بیٹا تو آفس چھوڑ دے, ریڈیو پہ بولے گا تو آفس چھوڑ دے گھر بیٹھ.
نہیں لیکن عامر کا جو فنڈا ہے نا وہی ہے, ہم بولے گا کہ ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے جی. تو عامر جو ہے نا وہ بالکل شانتی سے جو ہے بیٹھا رہتا ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا عامر تقریریں کرتا ہے, نہیں وہ نہیں بےچارا کرتا, بالکل معصوم ڈرا ہوا سہما ہوا بیٹھا رہتا ہے. ابھی اس نے خود ہی سٹیٹمنٹ دے دی, اگر میں نے زیادہ بولا تو مینجمنٹ مجھے بولے گی.
لیکن مسئلہ بتاؤں آپ کیا ہے, جرنلسٹ سے جو ہے نا جرنلزم تو ایک بہت اچھی چیز ہے, لیکن کچھ جرنلسٹ سے جو ہے نا وہ مجھے ویسا لگتا ہے.
نہیں یہ ادھر ہی اس کو روکو, یہ کچھ جرنلسٹ کا کیا, یہ کون
ڈسکلیمر چلایا تھا
جرنلسٹ, کچھ کون سے کچھ کون سے کچھ,
اس میں کچھ میں نا کچھ آ جاتے ہیں.
آپ وہ کچھ کون ہے,
کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. جرنلزم از ویری ریسپیکٹفل, بہت عزت. کچھ جرنلسٹ بیسیکلی ان کا ایک وتیرا, کیا وتیرا ہوتا ہے, وتیرا کیا
وتیرا ہوتا ہے,
وتیرا ہوتا ہے, یہ ورڈ ہے وتیرا,
وتیرا
واویلا مچا کے رکھتے ہیں. میں ایسے کہہ لیتا ہوں کہ ان کو آپ کچھ بھی بول لیں, اس میں سے کوئی نہ وہ
پخ نکال لیتے ہیں, پخ پخ اس کو بولتے ہیں, پنجابی میں بولتے ہیں اس کو پخ کٹ لین دین.
اب آپ بات کرو کشمیر کی, وہ بات کریں گے پشاور کی, ان کو بولو جی جانا ہے کراچی, بولیں گے لاہور. یار پہلے یہ تو مسئلہ حل کر لو, لاہور بھی چلے جائیں گے, اسلام آباد بھی چلے جائیں گے. یہ جو ایک جرنلسٹ,
مجھے لطیفہ یاد ہے, وہ ایک آدمی گیا نا اس کے پاس, وہ خان صاحب تھے ٹیکسی والے تھے, उसको कहा, उसको बोला खान साहब सदर जाएगा,
हाँ।
तो वो कहता है नहीं मुराद सदर वो तशरीफ आदमी है, वो नहीं जाएगा। एक दूसरे जो थे ना खान साहब, उनके पास वो गया, कहता है कि तुम मेरे साथ सदर चलोगे? कहता है मैं तो चला जाऊंगा, मेरी टैक्सी का कौन ख्याल करेगा? मेरी टैक्सी के पीछे से कौन ख्याल करेगा?
नहीं, बहुत ही शरीफ, देखिए ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही मासूम होते हैं।
मासूम
जैसे मैं आपको, मतलब नथिंग पर्सनल किसी की, वो नहीं, हाँ। नहीं कर रहा, ये जस्ट मजाक में बात हो रही है कि जैसे अभी मेरे कई, आपने ये भी लतीफा सुना होगा,
हाँ।
कि खान साहब ये क्या रुपए किलो सब्जी, सिर्फ समझ ले प्याज दी है,
हाँ।
कहते जी 5 रुपए किलो, खान साहब सारा ठेला दे दो, नहीं देगा। खान साहब सारा ठेला दे दो, सुबह का वक्त दे दो, खत्म करते, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो शाम तक हम क्या करेगा? बहुत मासूम होते हैं। इसमें आप मासूमियत देखें, आप देखें उनके कोई चलाकी नहीं होती।
नहीं नहीं नहीं,
स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रशांत बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार, और आप आग बंद करके ना आप ट्रस्ट कर सकते हैं,
हाँ।
इतने लेवल के होते हैं,
हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिल्कुल। जो बात है मुंह पे, तुम बड़ा मरा दोस्त है बस, तो दोस्त है बस, जो दुश्मन है तो
घर तक नहीं छोड़ेगा,
हाँ। तुम अगर दुश्मन है तो दुश्मन
नहीं, कब्र में ले जाए,
ब्लैक एंड व्हाइट, उनकी लाइफ बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट,
क्योंकि मेरे कई दोस्त कराची में पठान है, और
मेरे तो सारे ही पठान है,
पंजाबी है मेरा फ्रेंड, और वो ऐसी बात हो रही होती तो मजाक में, बहुत ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट,
स्ट्रेट फॉरवर्ड। असल में मुझे पठानों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि स्ट्रेट, कोई जलेबी की तरह उन्हें घुमाना नहीं है,
ऑनेस्ट।
खैर, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन पाकिस्तान ना, अब ये नहीं कह सकते आप सारे पंजाबी जो है, हाँ। जर्नलिस्ट तो बहुत ही अब करप्ट हो गए हैं ना माशाल्लाह से, कुछ कुछ कुछ
आवाज़ ना कुछ पे,
हाँ कुछ
पॉइंट टू बी नोटेड,
कुछ नॉट एवरीबडी। हमने तो देखे हुए हैं, हमारे तो अपने जो उस्ताद थे इस किस्म की, हम उनके मरने के बाद भी उनकी इंटेग्रिटी की कसम खा सकते हैं, ऐसे थे वो लोग। प्रोफेसर खालिद जो थे, एबीएस जाफरी, ओ माई गॉड, आप कुरान पे हाथ रख के उनके लिए, उनकी ईमानदारी की कसम आप खा सकते हैं।
अच्छे थे हर दौर में पाकिस्तान में, उस वक्त हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग थे, बस वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा जा रहे हर इंसान में जाना। लेकिन मेरा ईमान ये है कि जैसे उस वक्त जब पाकिस्तान आजाद हुआ और कुछ अच्छे लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया, फिर कुछ बीच में तूफानी मामलात हो गए, लेकिन मेरा ईमान ये है कि ये तूफानी मामलात भी कब तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर
यूथ नहीं चलने देंगे,
बाहर आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी इंशाल्लाह,
इंशाल्लाह।
चलो तो खबरें सुना दें इससे पहले,
चलो जी खबरें सुना दें इससे पहले कि आमिर की जो है तकरीर फिर से शुरू हो जाए, एक और जो है,
मैं तो अभी
टेक्नोलॉजी पे ये बड़ा,
नहीं नहीं, मुझे कल बेसिकली फ्राइडे को या शायद कल की बात है, फ्राइडे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो वो एक कोई हमारा चाहने वाला वो रेडियो सुन रहा था,
हाँ।
इत्तफाक से उस वक्त हम कुछ बोल रहे थे,
हाँ।
तो उसने फिर मुझे मैसेज किया संडे को, शायद सैटरडे या संडे को,
हाँ।
कि यार तुम एक काम कर लो, तुम एक लाइफ कोच का ना कोई सर्टिफिकेशन कर लो,
हाँ, हाँ।
तुम ज्यादा अच्छा काम कर लोगे उसमें,
हाँ, हाँ, हाँ।
और मैंने कहा यार ये लाइफ कोच क्या होता है,
हाँ।
डूबने से बचाने
जुझल करें
किसी की जिंदगी
जुझल करें,
कहते नहीं नहीं यार जो तुम्हारा शायद वो आईटी पर ही किसी पर वो बात कर रहे होंगे तो उन्होंने,
हाँ,
सुन,
यानी कि जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप लेक्चर्स देंगे, उनका मतलब है, हाँ।
मैंने कहा
तो लेक्चर्स पे लोग बहुत पैसे कमाते हैं,
इस काबिल नहीं है अभी तो, बहुत ही सफर
जो भी है जिस तरह का भी है, तुम अगर ये छोटी छोटी चीजें डाल के यूट्यूब पे डालें, उस पर अपना जो भी कोई तुम्हारा कोई वी लॉग है उसके ऊपर तुम अगर डालना,
ये वी लॉग है ना, ये 770 का वी लॉग भी जा रहा है,
हाँ। तो ये वी लॉग्स तुम ऐसे डालोगे ना तो ये लोगों की एजुकेशन के लिए उसने तुम्हें बोला होगा कि बच्चे जो है वो एजुकेट होंगे, क्योंकि उस दिन जब तुम आईटी के ऊपर बातें कर रहे थे ना, वो मुझे भी लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चों को बताई जाए,
बिल्कुल,
क्योंकि सीधी बात है कि बेशक मैंने बहुत काम किया अपने फील्ड में, लेकिन जो तुमने उस दिन बातें बताई वो बहुत सारी बातें मुझे भी नहीं पता थी, तो मुझे नहीं पता है। इसी तरह और बहुत सारे जो यंगर जनरेशन के लिए खासतौर पर वो फायदा ना, हमें तो जी बस जो फोन है ना उस पर फोन करना आता है, रिसीव करना आता है, मैसेज भेजना आता है, देखना आता है,
बिल्कुल,
लेकिन जो बातें तुम टेक्नोलॉजी की कर रहे थे ना वो उस लेवल की हैं जो आजकल के बच्चे समझ सकते हैं ना, तो तुम्हें जरूर ये करना चाहिए, अगर किसी ने तुम्हें ये मशवरा दिया तो उसने बड़ा अच्छा मशवरा,
गर्मा गर्म खबरें सुना,
हाँ जी। अच्छा जी, दिस पार्टिकुलर प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय विलेज टेस्ट, ऑन्टारियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे, और इनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, आप जाएं और एंजॉय का मजा लें। एक है 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा पे, इसका नंबर है 9052323663, दूसरा है 2294 लेक शोर रोड वेस्ट ओकविल में, इनका नंबर है 9052262294। और जी चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, इसमें 1400 बंदे प्लस ढाई बंदा आप बुला सकते हैं। बिल्कुल 32 रूम लग्जरी होटल है, बड़ी जबरदस्त जगह पे है और बहुत जबरदस्त ये खाने जो हैं ये बनाते हैं इंडियन, पाकिस्तानी, वेस्ट इंडियन। और अगर आपको अपना कोई छोटा बड़ा इवेंट यहाँ पे करना है तो आप इनको कॉल कर लें 8647965-3823। और जनाब अगर आपने पैसे जो हैं वो पाकिस्तान भेजने हैं लेम्फाय से तो आप बिल्कुल जीरो ट्रांसफर फी के जो है वो उससे भेज सकते हैं। डाउनलोड आप ये कर लें लेम्फाय ऐप जो है अपने एंड्रॉयड और एप्पल फोन्स के अंदर, और जिस वक्त आप $250 भेजते हैं यहां से तो आपको $30 का कैश बैक मिलता है। आपको यूज करना है अपना प्रोमो कोड ई आवाज 10 जब आप करेंगे तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पहली तो खबर हम आपको इसलिए ये हमने ली है क्योंकि ये जाहिर है कि पब्लिक इंटरेस्ट की है, क्योंकि सितंबर 4 को फिर से ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स जो है वो बढ़ेंगे या कम होंगे कनाडा के। इसलिए कनाडा की जो एनुअल इन्फ्लेशन है उसके बारे में रिपोर्ट आई है जी कि 2.5% पे वो चली गई थी लास्ट मंथ, और इसने जो इकोनॉमिस्ट कह रहे थे उन जो फोरकास्ट दे रहे थे उसको बिल्कुल इसने मैच किया है, और वो लग रहा है कि सितंबर में अब जो ये आने वाले हैं रेट्स शायद ये नीचे आ सकते हैं। कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट जो थी उसने कहा था कि प्राइसेस फॉर ट्रेवल टूअर्स पैसेंजर व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी इनकी वजह से जो है क्योंकि ये नीचे आए तो इसलिए ये इन्फ्लेशन भी नीचे आई। शेल्टर कॉस्ट जो थे अलबत्ता जो है वो उसमें काफी जो है लोगों को वो मुश्किलें रहीं, और रेंट्स और मॉर्गेजेस जो हैं वो भी अभी तक हाई हैं। जो शेल्टर प्राइसेस हैं वो जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी वो जरा उसमें भी थोड़ा सा वैसे ठहराव सा आया है। 5.7% ईयर ऑन ईयर स्लो वो हुई है, डाउन फ्रॉम 6.2% इन जून, और जो इन्फ्लेशन थी वो बिलो 3% आई सिंस जनवरी। तो जो टिम मैकलम हैं गवर्नर बैंक ऑफ कनाडा के, उन्होंने कहा जी कि हमारा बड़ा कंसर्न है कि ये जो हाई इन्फ्लेशन है उसकी वजह से ये जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हमको लगने पड़ रहे हैं ये ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे, ये लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो हमारी जो गवर्निंग काउंसिल है उसने अब ये डिसाइड किया है कि ये लोअर पॉलिसी अगर रहेगी तो इकोनॉमी उसमें स्पीड से पिकअप करेगी। पाइजन तुम्हें जल्दी समझ आ गया, वेरी गुड, प्लीज इस पर आप गौर करना। कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसने अपनी एक वीडियो जो है जी वो डिलीट की है, और उसके ऊपर क्योंकि बड़ा सारा एतराज आ गया था। वो जो वीडियो थी उसके पीछे जो थे कुछ शायद रशियन फाइटर जेट्स चल रहे थे, लेकिन उसके ऊपर मैसेजेस जो थी वो मैसेजिंग गलत चली गई। वीडियो जो थी वो पोस्ट की गई थी पार्टी की जो एक्स हैंडल है उसके ऊपर, और उसके ऊपर स्लोगन था कैनेडा अवर होम, और उसमें फीचर की गई थी स्पीच जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं पीए पॉलियाव की फ्रॉम कैलगरी स्टैम्पीड। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि जो कनेडियन मैन जो ड्राइव कर रहा है ऑन हाईवे ऑन हिज वे टू होम आफ्टर ड्रॉपिंग ऑफ हिज किड एट होम स्पॉट्स ब्रांड न्यू फाइटर जेट इन स्काई, और वो कहते हैं जी कि दे वर डूइंग ट्रेनिंग मिशन इन स्काई एंड दे आर रेडी टू डिफेंड होम एंड आवर नेटिव लैंड। अब वो जो दो जेट जिनकी तस्वीर ये वीडियो में दिखाई गई है वो रशियन SU-17 और SU-27 जेट्स हैं। अब डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर के जो स्पोक्स पर्सन है डैनियल मिंडन, उन्होंने कहा कि ये इतनी शॉकिंग बात है कि जो हमारी ड्रीम फॉर कनाडा है वो उसके अंदर अब रशियन फाइटर जेट्स भी जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, और हमारे ग्लोरियस प्रेरीज जो हैं उसके अंदर वो ट्रेनिंग मिशन कर रहे हैं। एनडीपी के जो डेप्यूटी एथिक्स क्रिटिक हैं चार्ली एंगस, उन्होंने भी कहा जी कि ये आप स्टॉक विस्फोटो जरूर यूज करें लेकिन इस फैंटेसी के अंदर रशिया और यूएस और सर्बिया जो है उसको कनाडा की जो फ्यूचर ड्रीम है उसके अंदर आप शामिल ना करें। और उन्होंने फौरन डिमांड किया है पीए पॉलियाव साहब से कि ये जो फेक डिजिटल कंटेंट है इसको आप बिल्कुल डिनाउंस करें, और उसके बाद जो थी पार्टी ने फिर ये रिमूव कर ली थी और कहा था जी कि मिस्टेक्स होती हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के जो स्पोक्स वूमन है सारा फिचर, उन्होंने कहा जी कि हमारे से मिस्टेक हुई है ठीक है, लेकिन लिबरल एक एड जो था 2011 में तो उन्होंने भी स्टॉक पिक्चर्स यूज की थी, यानी कि मैं तो गलत काम कीता है तुसी भी कीता है इसलिए नो प्रॉब्लम। तो ये नहीं होता ना कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। तो भरत जी ये इसके ऊपर काफी इस वीडियो के ऊपर शोर वोर मचा है और जो है कंजर्वेटिव पार्टी को काफी इसका बैकलैश जो है आजकल सेना पड़ रहा है। ऑन्टारियो गवर्नमेंट जो है जी उसने फाइनली कहा है कि वो सुपरवाइज साइट्स जो हैं फॉर ड्रग यूजर्स स्कूल के पास से वो इनको हटाएंगे और ये जो चेंजेस हैं इसका मतलब है कि तकरीबन जो स्कूल का 200 का मीटर का एरिया है वहां पे ये बिल्कुल ये सेंटर्स अलाउ नहीं किए जाएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि ये सेंटर्स जो है हार्म रिडक्शन में बड़ा हेल्प करते हैं क्योंकि ओपियोइड रिलेटेड डेथ्स जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हैं। ट्रोनो के अंदर जो है ये ड्रग का यूज इन सेफ क्लिनिक्स में जो होता है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल्स उसको मॉनिटर करते हैं, लेकिन ये जो इसकी फर्स्ट साइट थी ट्रोनो के अंदर 2017 में खुली थी और उसके बाद 10 और साइट्स आई थी, लेकिन अब ऑन्टेरियो की गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं इनको स्कूल के आसपास नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर बड़ा एतराज किया है कि अगर कोई बच्चा जो है वो ड्रग ओवरडोज में आ जाता है तो अगर आसपास कोई इस तरह का सेंटर नहीं होगा तो फिर कैसे उसकी जान बचाई जाएगी। तो भाईजान यही तो चीजें आपने डिस्करेज करनी है, ड्रग्स का जो इतना प्रमोशन है उसी को तो आपने रोकना है। जैसे स्टैट्स कनाडा की आज एक खबर है जी, और मतलब इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए जब मैं आपको ये खबर सुनाऊं, तो आपको पता ही होना चाहिए जो कुछ हालात है। मीडियन फैमिली इनकम आफ्टर टैक्स जो है इन 2022 फेल कंपेयर्ड टू 2021 जब इसको एडजस्ट किया गया इन्फ्लेशन के साथ, और इसमें सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिट जो है वो यंग पीपल है। मीडियन फैमिली इनकम आफ्टर टैक्स जो थी वो थी 60,800 इन 2022, अप 2.5% फ्रॉम 2021, लेकिन जिस वक्त इसको एडजस्ट किया गया एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ऑफ 6.8%, तो ये फिगर्स जो थी दे वर डाउन 4% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो अब एक जो सिंगल पेरेंट फैमिली है उसमें अगर पेरेंट जो है 25 ईयर से नीचे है तो उसकी जो सैलरी है वो अब 15.1% नीचे आई है टू 24,619 2022, और जो 25 साल और उससे छोटे हैं और उनके अंदर जो है जो सेंसस फैमिली जो है वो अगर है तो उसके अंदर ड्रॉप जो है 12.9% आया है टू 17,650 इन 2022। कपल फैमिलीज जो थे यंगर देन 25 उसके अंदर भी ड्रॉप आया 9% से टू 45,017 2022। तो आप सोचें कि अगर एक फैमिली 40-45 हजार कमा रही है तो इस इन्फ्लेशन के उसमें वो कैसे जो है वो सरवाइव कर रही होगी। तो ये जो है बड़ा मसला है सोचने का कनेडियन गवर्नमेंट के लिए इस वक्त, जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए। फ्लडिंग जो है ट्रोनो और सदन ऑन्टेरियो के अंदर आई है, उसकी वजह से क्लेम्स जो हैं वो बेतहाशा बढ़ गए हैं। लास्ट मंथ इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा ने कहा कि 940 मिलियन इंश्योरेंस वर्थ ऑफ इंश्योरेंस डैमेज जो है हमारे साथ क्लेम किया गया था। ये क्लेम्स जो है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर है फ्रॉम जुलाई 15 से 16 के बीच में जब 100 मिलीमीटर्स ऑफ रेन जो थी वो आई थी। आईबीसी के मुताबिक इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो बड़े अरसे से ये जो सीवियर वेदर इवेंट्स हैं इनके बारे में बात कर रही थी और उन्होंने कहा जी कि ये इस समर में ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा और जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे वही हुआ और वार्निंग्स जो हम दे रहे थे उसकी तरफ नहीं देखा गया। जुलाई का जो टोरेंशियल डाउनपोर था वो ट्रोनो के 2013 स्टॉर्म से इन्होंने कंपेयर किया है जिस वक्त बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स कनाडा में आए थे और उन्होंने कहा था जी कि उसके बाद फिर $1 बिलियन के क्लेम्स जो थे वो डाले गए थे। तो ये है जनाब चक्कर। तो इसीलिए बेचारा ट्रूडो कहता है कि हम कार्बन टैक्स लगाएंगे, बाकी जो है उसकी जान के पीछे हैं कि नहीं कार्बन टैक्स नहीं लगाना तुमने। पुतिन साहब जो है जी वो बाकू में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा है वहां पे कि मॉस्को जो है अगर आप चाहते हैं कि आजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में मीडिएशन कराए पीस टॉक्स के लिए तो वो कराने को तैयार है। पुतिन साहब आजरबैजान में 2 डे विजिट के लिए आए हुए हैं इस बड़ी ही ऑयल रिच कंट्री के अंदर, और हालांकि मॉस्को जो है उसने जब इन्वेड किया था 2022 में तो इसको ज्यादा अच्छी नजर से नहीं देखा गया था, लेकिन ये जो कॉन्स्टेंटली जो आजरबैजान की और आर्मेनिया की लड़ाई हो रही थी नागोर्नो काराबाख के ऊपर जिसके ऊपर हमने आपको बहुत सारी स्टोरीज बताई थी, जो कि जहां पे के रहते तो मुसलमान थे लेकिन आर्मेनियन सेपरेटिस्ट जो थे वो इसके ऊपर अपना कब्जा चाहते थे, तो इसको फिर ले लिया था आजरबैजान ने आफ्टर सितंबर ऑफेंसिव। रशिया जो है उसने वैसे तो उसका रोल इस इलाके में बहुत ज्यादा मीडिएशन कर रहा है। जब इनकी मुलाकातें आजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव के साथ हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में कोई दोस्ती कराई जाए तो हम हमें बड़ी खुशी होगी कि हम ये करा सकेंगे। अज़रबैजान जो है पिछले 30 ईयर से वो ये जो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट थे उनके खिलाफ लड़ रहा था नागोर्नो कराबाख के अंदर, और उसने आर्मेनिया ने बहुत ज्यादा एक्यूज किया था रशिया को कि वो बिल्कुल एक्शन इसके सिलसिले में नहीं ले रहा है, और इसीलिए उसने फिर वेस्ट के साथ टाइज बनाए थे। लेकिन जिस वक्त अज़रबैजान ने इस इलाके को टेक ओवर किया तो रशिया से उन्होंने जब मदद मांगी थी आर्मेनिया ने, तो रशिया ने बिल्कुल रिफ्यूज किया था इंटरवीन करने के लिए, और इसलिए अज़रबैजान के लिए इलाका था उस इजी था उस इलाके को लेने के लिए। लेकिन अब चूंकि लड़ाई कॉन्स्टेंटली वहां पे है तो पुतिन साहब ने कहा है कि अगर हम बैठ के बात कर सकते हैं, उन चीजों को सुलझा सकते हैं, तो मैं रेडी हूं ये सब कुछ करने के लिए। ट्रंप साहब तो आपको पता ही है, अब ट्रंप साहब हैं अगर जीत के आ जाएंगे तो फिर और भी आपको इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने को मिलेंगी। इस वक्त तो ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया पर क्या किया है कि जो सिंगर है बड़ी मशहूर टेलर स्विफ्ट, उनका जो है जिक्र किया है, और उन्होंने कहा जी कि इनके बहुत सारे जो फैंस हैं वो मुझे बैक कर रहे हैं इस इलेक्शंस के अंदर, और ये बिल्कुल जो है वो गलत न्यूज है। इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन ये सारी की सारी AI जनरेटेड हैं और डीप फेक हैं ये, और ये जो हैं दीज आर टेकन फ्रॉम राइट विंग सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो एक पिक्चर में देखा जा रहा है कि एक स्माइलिंग स्विफ्ट फैन जो है उसने टी शर्ट पहनी हुई जिसमें वो कह रही है स्विफ्टीज फॉर ट्रंप, दूसरी ने कहा कि अंकल सैम अर्जेस पीपल टू वोट फॉर ट्रंप, और अभी तक टेलर स्विफ्ट ने इनको पब्लिकली एंडोर्स तो नहीं किया है, उन्होंने तो सपोर्ट किया था डेमोक्रेटिक पार्टी को 2020 में, बल्कि उन्होंने बहुत ओपनली उस वक्त क्रिटिसाइज किया था ट्रंप साहब को, और जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहे थे जॉर्ज फ्लॉयड के सिलसिले में जो कि पुलिस ऑफिसर्स ने उसके साथ किया था, तो उसके ऊपर एक्स के ऊपर इसने कहा था कि ये बहुत ज्यादा जो वाइट सुप्रीमेसी की आग इन्होंने जला दी है, और ये जो है रेसिज्म इन्होंने बहुत ज्यादा फैला दिया है, और ये जो वायलेंस जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमको वी वोट यू आउट। तो अब ट्रंप साहब अपने सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि इनके फैंस जो है वो मेरा बड़ा साथ दे रहे हैं, तो लोगों को आज जो है बड़ी हैरत हुई कि भाई एक प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है वो इस तरह का इतना डीप फेक जो है वो कैसे कर सकता है, कैसे चलेगा ये झूठ। भारत अल जजीरा की ये रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक जो डेमोक्रेट्स हैं वो अब अपने नेशनल कन्वेंशन के लिए इकट्ठे हुए हुए हैं टू नॉमिनेट कमला हैरिस एज देयर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और बहुत सारे जो उस जगह के ऊपर कन्वेंशन के बाहर पैलेस्टीनियन जो राइट्स एडवोकेट्स हैं वो आए हुए हैं, और उन्होंने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि अगर हैरिस ने कंप्लीट आर्म्स एम्बार्गो ना लगाया इसराइल के ऊपर तो हम बिल्कुल इसको वोट नहीं देंगे। ये जो मार्च है, ये जो प्रोटेस्ट है, इसका नाम है मार्च ऑन DNC, और ये डिमांड कर रहे हैं इमीडिएट एंड कंप्लीट एंड परमानेंट सीज फायर इन गाजा, और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि वैसे तो अगर ये आ जाएंगी तो हमें तो नहीं लग रहा कि कोई मेजर चेंज आएगी, लेकिन फिर भी हम इनके ऊपर प्रेशर जरूर डालना चाहते हैं कि हमारा फिर वोट जो है वो एक्सपेक्ट ना करना। वैसे तो वो कहते हैं जी कि ये दोनों ही पार्टीज डेमोक्रेट्स हों चाहे के जो है रिपब्लिकन्स हों, कोई इनकी पॉलिसी खास चेंज नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम प्रेशर जरूर इनके ऊपर बिल्ड करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है बाइडन साहब की वजह से जीनोसाइड हो गया है गाजा में, और कॉन्स्टेंटली ये कोशिश कर रहा है इसराइल के पैलेस्टीनियंस के ऊपर बॉम्बिंग भी कर रहा है और उनको स्टार्वेशन की तरफ लेकर गया है। जो पोस्टर्स लोगों ने उठाए हुए थे उसमें उन्होंने कहा जी कि ये दोनों जो तुम लोग हो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, तुम दोनों के हाथ पे खून है और हम बिल्कुल कोई वोट्स नहीं देंगे कमला को अनलेस एंड अंटिल ये एम्बार्गो लगाएगी फॉर इसराइल। कन्वेंशन जो कि कल मंडे के दिन शुरू हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ डेमोक्रेट्स जो हैं यहां पे और उनके सपोर्टर्स यहां पे शिकागो में आए हुए हैं टू सेलिब्रेट हर कैंडिडेसी, और आज जो है अभी थोड़ी देर में ओबामा साहब जो हैं वो भी इधर बात करेंगे, और ओबामा साहब की और हैरिस साहिबा की पिछले 20 साल से ये डिफरेंट जगहों पे मिलते हैं और इनकी जो है अच्छी जैसे कह सकते हैं हमारी जबान में सलाम दुआ है, और बड़ा इन्होंने एक दूसरे को पॉलिटिकली जो है वो सपोर्ट किया हुआ है। तो ओबामा साहब भी अब आ गए हैं जी, अब वो भी यहां पे बात करेंगे। संडे गार्डियन की आज ये जो स्टोरी आई है ये बहुत ही ज्यादा जो है अगेन आप इसको कह सकते हैं कि आई ओपनर स्टोरी है, क्योंकि एक दफा से फिर से जो गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश जो कि प्लॉट सारा पकड़ा था अमेरिका में, उसके ऊपर और कुछ है। ये संडे गार्डियन ने निखिल गुप्ता जो कि इंडियन नेशनल है, जिनको के एक्यूज किया गया है कि हु वॉज इन्वॉल्व इन द प्लॉट टू किल गुरपतवंत सिंह पन्नू इन यूएस, उनसे फॉर द फर्स्ट टाइम संडे गार्डियन ने बात की है सिंस हिज डिटेंशन इन प्राग लास्ट ईयर। और उस पर उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं, मुझे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस के अंडर जो है फ्रेम किया जा रहा है। इनको एफबीआई ने प्राग में लास्ट ईयर अरेस्ट किया था और फिर इसको जो एक्सट्राडाइट करके न्यूयॉर्क लेकर आए थे, जहां पे के इनको बड़े ही सख्त कंडीशन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन में रखा गया है। इन्होंने कहा जी कि ये जो जेल कंडीशन हैं ये बिल्कुल एक स्लॉटर हाउस की तरह, यानी कि जहां पे जानवर काटे जाते हैं उसका ये जो है सेंटर है जहां पे मुझे रखा है। मुझे रॉन्गली फ्रेम किया है, मेरा इस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सारे का सारा ड्रामा है और ये सिख कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो यूएस और इंडिया के अंदर जो डिफरेंट जगहों पे, यूएस के अंदर तो फुल फ्लेज नवंबर के और बाकी इंडिया के अंदर जो कुछ स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं उस चीज के लिए इसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। मैं बिल्कुल किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूं, ना ही मैं कभी किसी इंडियन ऑफिशियल के साथ मिला हूं। ये मेरे ऊपर जो क्रिमिनल केस लगाया है ये बिल्कुल गलत लगाया है, मैं एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूं, लेकिन मुझे मेरे पे बहुत ज्यादा जेल में जुल्म किया जा रहा है, मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, मुझे फिजिकल मेंटल टॉर्चर दिया जाता है और मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ये लोग कह रहे हैं मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हैं कि मैं मान जाऊं उस चीज को। और उन्होंने कहा जी कि ये इनकी आदत होती है कि ये इंटिमिडेशन और डर्टी टैक्टिक्स यूज करते हैं ताकि लोग इनकी बोली बोलना शुरू कर दें जो ये चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने से ज्यादा अपनी फैमिली की फिक्र है, क्योंकि जो कोई भी मैंने पैसे कमाए थे वो मैंने जो लीगल फीस है इन चेक रिपब्लिक और यूएस के अंदर मैंने वो अपनी लीगल फीस में वो पैसा जमा कर दिया है, तो मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे एक पब्लिक डिफेंडर दिया जाए, यानी कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाए जो कि मेरा केस लड़े। तो ये चीजें फिर से बहुत ज्यादा जो है भड़क गई हैं। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज है और ये भी इंतहाई खतरनाक न्यूज है इफ यू लुक एट द होल सिनेरियो एंड इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज, अगर आपको समझ में आए तो। एसोसिएटेड प्रेस की इस न्यूज के मुताबिक एक जो फॉर्मर सऊदी ऑफिशियल है उसने अलेज किया है, उसने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए कि इसने अपने जो फादर हैं किंग सलमान उनके सिग्नेचर्स फोर्ज करके एक रॉयल डिक्री जो थी वो इशू की थी, जिसमें के कहा गया था कि सऊदी अरेबिया जो है अब वॉर करेगा यमन के हूथी रैबल्स के अगेंस्ट। सऊदी अरेबिया जो है वो कहते हैं जी कि हमने उनसे पूछने की कोशिश की थी कि ये एलिगेशंस क्या ट्रू हैं कि नहीं, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये जो सऊदी इंटेलिजेंस का फॉर्मर ऑफिशियल है साद अल जबरी उसने एक इंटरव्यू दिया है रिसेंटली बीबीसी को, उसमें उन्होंने कहा जी कि मेरे से बहुत सारे सऊदी इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने बात की है और उन्होंने ये मुझे डिटेल्स दी हैं। ये साद अल जबरी जो है इस वक्त कनाडा के अंदर रहता है और बहुत अरसे से सऊदी अरेबिया के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके दो बच्चे जो हैं उनको सऊदी गवर्नमेंट ने जेल में डाला हुआ है और वो कहते हैं जी कि वो मुझे इसलिए जेल में डाल के तंग कर रहे हैं, मुझे ल्योर कर रहे हैं कि मैं सऊदी अरेबिया आऊं और मैं जो है उनकी बात मानूं और जो वो चाहते हैं वो मैं करूं। तो एमबीएस जो है उनका आपको पता ही है कि बिहेवियर थोड़ा सा असर्टिव है और खासतौर पर जब उनको दे रहे थे एक्सेशन टू पावर दे रहे थे तो 2015 में, तो उस वक्त उन्होंने जो थी वो यमन वॉर शुरू अलेजली इनकी वजह से इन्होंने करवाई है और वॉर शुरू हुई हुई थी वैसे वहां पे, तो उन्होंने कहा था जी कि हम इनके अगेंस्ट यूथीज के खिलाफ जो है वो जो गवर्नमेंट है उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो वो कहते हैं जी कि ये अब जो है बहुत ज्यादा क्रैकडाउन करते हैं सारी डिसेंटिंग जो वॉइसेस होती हैं और उनको अलाउ नहीं करते हैं और ये जो इन्होंने काम किया ये बड़ा गलत किया और उसकी वजह यह है कि ये फायदा इन्होंने उठाया किंग सलमान की, क्योंकि मेंटल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जो डिटेरियोरेट कर रही है, तो इसलिए इसने अपने बाप का फायदा उठाते हुए ये सारा काम किया। तो ये बहुत ही सीरियस किस्म के एलिगेशन हैं एक क्राउन प्रिंस के और वो भी मोहम्मद बिन सलमान जैसे, तो अब पता चलेगा कि ये आने वाले दिनों में कि ये सच है कि नहीं। लेकिन अगर ये एसोसिएटेड प्रेस ने कोट किया है और बीबीसी का इंटरव्यू है तो शायद कुछ सच्चाई इसमें होगी, लेकिन अब ये तो सऊदी गवर्नमेंट इसके ऊपर अच्छा जवाब जो है वो दे सकती है। ब्रिटेन के अंदर आपको पता ही है कि बहुत अरसे से जो है बड़े वायलेंट किस्म के राइट्स चल रहे हैं, जिस वक्त वो تین بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس پہ الزام لگایا تھا کہ ایک جو مسلمان ہے وہ اس کے اندر انوالوڈ ہے. اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کہ جتنے مسلمانوں کے بزنسز ہیں ان کے اوپر یہ اینگری کراؤڈز جو ہیں کانسٹنٹلی اٹیک کر رہے ہیں اور ابیوز کر رہے ہیں یہ مائگرنٹس کو, مائنورٹی گروپس کو, خاص طور پہ مسلمانوں کو. اس کے اندر بلیک اور ایشین برٹنز اور بہت سارے خاص طور پہ جو مائنورٹی گروپس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, لیکن مسلمان کہتے ہیں جی کہ ہمارے پہ ذرا یہ زیادہ ہی کچھ مہربانیاں دکھا رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں, یہ اینگری کراؤڈز جو ہیں, یہ انٹر ہو رہے ہیں مسلمانوں کے سٹورز میں, کیفیز میں, ریسٹورینٹس میں, ان کے شاپس میں, اس میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, اس کے شیشے توڑ رہے ہیں, وینڈلائز کر رہے ہیں اور لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں یہاں سے چیزیں. وہ جو ہیں نیشنلسٹ سلوگنز جو ہیں وہ لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سیو آور کڈز فرام دیم, دیر از نو بلیک ان یونین جیک. یہ جو یونین جیک ان کا جو وہ جھنڈے کا جو نشان ہے, آپ کو پتا ہی ہے کہ جہاں جہاں برٹن جاتا تھا رول کرنے کے لیے یونین جیک کا فلیگ وہ ریز کرتا تھا, تو اسی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی بلیک نہیں ہے, مگر بلیک سے ان کا مطلب جو ہے کوئی مائنورٹی گروپ نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے جو بزنسز ہیں مسلمانوں کے, جو کوئی شاپس ہیں, آؤٹ لیٹس ہیں, ان کو آگ لگا دی گئی ہے. ان کے جو آؤٹ لیٹس کے اندر جو فون ہوتے ہیں ان کو پھینکا جاتا ہے, پیسے چوری کیے جاتے ہیں, جو رجسٹری ہوتی ہے وہ جو کیش رجسٹری اس کو توڑا جاتا ہے, اس میں سے پیسے نکالے جاتے ہیں. اور برٹن کے اندر جو مسلمانوں کی پاپولیشن ہے وہ اکواٹر آف اٹس پاپولیشن ہے, یعنی کہ 1.15 ملین مسلمان ہیں وہاں پہ. اور یہ وائلنس جو ہے لیورپول, بیلفسٹ اور مینچسٹر کے علاوہ اور 21 سٹیز کے اندر یہ جو ہے. کنزرویٹو پالیٹیشنز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اسلامک جو ایکسٹریمزم ہے اس کے بارے میں یہ لوگ بات کرتے ہیں, اور جو فار رائٹ ایکسٹریمزم ہے اس کے بارے میں انگلینڈ کے اندر کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو انکنسسٹنسی ہے اس کی وجہ سے سوشل کوہیژن جو ہے یا جو اس کے اندر ہارمنی ہے وہ کانسٹنٹلی خراب ہوتی جا رہی ہے. ابھی ایک یو گف کا پول جو انگلینڈ کے اندر آیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ 52% برٹنز یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کو جو میجر خطرہ ہے وہ اسلامک جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان سے ہے. تو یعنی یہ جو اینگر ہے مسلمانوں کے خلاف انگلینڈ کے اندر بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آج جو سٹر جو پرائم منسٹر کی جو ہے جو گورنمنٹ ہے ابھی نئی سٹارمر صاحب کی, اس کے اوپر آج لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کا لا اینڈ آرڈر کہاں ہے, اور یہ جو اتنی ہارمنی خراب سوسائٹی کے اندر کی جا رہی ہے اس کا کیئر سٹارمر جو ہے پرائم منسٹر, ان کو آج لوگوں نے ذرا پوچھا ہے. دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی کینیڈا آل نیٹورک, سعودی ایئر لائن گلوبل سیل جو ہے جی. اوکے اچھا, ایئر ونگز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ آپ کے لیے سعودی گلوبل سیل جو ہیں وہ لا رہے ہیں, اور 50% آف آپ کو مل سکتا ہے. یہ جو سیل پیریڈ ہے یہ 31 اگست تک رہے گا. اس میں آپ کو ٹریولنگ جو ہے وہ کرنی ہے 1 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر کے بیچ میں. یہ جو ٹکٹ ہے اس کا ویلیڈیٹی رہے گا ایک سال تک, لیکن ٹکٹس جو ہیں وہ آن یا آفٹر 18, یعنی کہ آج تو خیر 19 ہو گئی ہے تو ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں, اور بیفور 31 اگست آپ نے اپنا یہ ٹکٹ بک کرنا ہے. تو آپ اگر چیپ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ان کے ساتھ بات کر لیں. اور جناب راجہ بادشاہ کے تو بہت سارے انہوں نے پیسے عامر کے بچا لیے ہیں, اور اب اس کی بیگم کہہ رہی ہے وہ پیسے کہاں ہیں مجھے دو. تو اگر آپ کو بھی اپنے پیسے بچانے ہیں تو آپ بھی راجہ بادشاہ جی کے پاس جائیں. یہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کے 1775 ڈالرز جو ہیں بچاؤں گا. راجہ بادشاہ جو ہیں آل اسٹیٹ کے ساتھ ہیں, اور ان کا نمبر ہے 6472903773 ان کا نمبر ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, آج انہوں نے اتھارٹیز کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ 50% آف آل پبلک سیکٹر کارگو جو ہے اس کو شفٹ کر دیا جائے گوادر پورٹ کے اوپر. آج یہ ایک میٹنگ چیئر کر رہے تھے جس میں کہ ریویو کر رہے تھے چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان میں, کیونکہ کچھ دن پہلے چائنیز ڈیلیگیشن ایک پاکستان میں آیا تھا July 30 سے August 6 تک, اور اس کے اندر وہ بہت سارے جو منسٹریز کے ریپرزینٹیوز اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملے تھے, اور کہا تھا کہ ہم ٹریڈ, ایگریکلچر, آئی ٹی, کمیونیکیشن, انرجی, انفراسٹرکچر کے اندر ہم انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر ان کی ملاقاتیں ٹاپ لیڈرز آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے بھی ہوئی تھی, اور اس سلسلے میں یہ طے پایا ہے کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں उनको बूस्ट देने के लिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को चाइना के डिफरेंट सिटीज में पाकिस्तान के रोड शोज यानी कि उनके मेले वहां पे करवाए जाएंगे और चाइना ने यह भी एग्री किया है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करेगा पाकिस्तान को, अपग्रेड करेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रोमेडिकल डिवाइसेज और दूसरे सेक्टर में हेल्प करेगा पाकिस्तान की। इसके अलावा चाइनीज ऑटो स्पेयर पार्ट्स की एक जो कंपनी है बहुत बड़ी, उसने कहा है कि वो पाकिस्तान में प्लांट लगाएंगे और साथ साथ जो है अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी पाकिस्तान में बनाने की बात जो है वो आज इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ की गई। यहां पे जो वो कहते हैं जी कि रिसर्चर्स जो हैं उनको एग्रीकल्चर ट्रेनिंग दी जाएगी चाइना में और इस सिलसिले में 572 एप्लीकेशंस आ गई हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एहसन इकबाल साहब को कहा कि ये सारे का सारा ट्रांसपेरेंटली ये सिलेक्शन आप करें और इन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए चाइना में भेजें। तो ये आज की जो मीटिंग थी उसमें बातचीत हुई। बुशरा बीवी जो है उसको डिस्चार्ज किया है ये जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट एटीसी ने इन रावलपिंडी इन 12 केसेस रिलेटेड टू मे 9 राइट्स। ये जो हियरिंग थी आज एटीसी के जो जज हैं मलिक इजाज आसिफ कर रहे थे एट मेड शिफ्ट कोर्ट इन अडियाला जेल, जिसको के अटेंड किया था इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स ने ऑफ मे 9 केसेस। डिफेंस काउंसिल जो थे उन्होंने कहा कि बुशरा बीवी का फिजिकल रिमांड हमको और चाहिए है। इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे इनके काउंसल सलमान सफदर राजा और एडवोकेट मलिक फैसल। एटीसी के जज जो है उन्होंने रिजेक्ट किया रावलपिंडी पुलिस की प्ली ऑफ फिजिकल रिमांड। उन्होंने जिस वक्त ये सारे दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट सुने उसके बाद इन्होंने जो बुशरा बीवी के केसेस थे उनको रद्द किया। आउटसाइड अडियाला जेल सफदर साहब जो है उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा जी कि इनको तमाम केसेस एक्विट किया गया है और जो है ये जो भी कोई क्रेडिबिलिटी थी जो स्टेटमेंट्स की कहा जा रहा था कि ये क्रेडिबल है इनके खिलाफ वो बिल्कुल सबको रिजेक्ट किया है कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि ये एडमिसिबल नहीं है। इमरान खान साहब जो है उनको भी साइफर केस में क्लीन चिट मिली है लेकिन डिटेल वर्डिक्ट अभी आना बाकी है। इसके अलावा सफदर राजा साहब ने कहा कि जी ये जो है गवर्नमेंट ये राइट रखती है कि ये जो आज का वर्डिक्ट आया है बुशरा बीवी के लिए वो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। तो बहरहाल जी कोर्ट तो छोड़ती है लेकिन बेचारों को निकलने तो दे नहीं रहे हैं, तो अब पता चलेगा भाई आगे चल के कि कब तक रखेंगे इनको, कब तक ये जो हैं ये अंदर ही रहेंगे दोनों मियां बीवी। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इंग्लैंड को आज अर्ज किया है कि वो फ्रीडम और फेयरनेस के लिए जो है वो पाकिस्तान में वो उसके साथ खड़ा रहे। एक लंदन बेस्ड टीवी चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टार्मर उनको कहा है कि आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज अपहोल्ड करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरे की एलाइज जो हैं वो जेल के अंदर हैं और जो यहां पे जो क्रिटिक्स हैं ऑफ गवर्नमेंट एंड मिलिटरी रिपोर्ट्स जो इन तक पहुंची हैं कार्ल स्टार्मर तक उसमें जाहिर है कि उनको ऑलरेडी स्टार्मर साहब को बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा अथॉरिटीज जो हैं हरासमेंट कर रही हैं, जिसको कि जाहिर है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने रिजेक्ट किया कि किसी के खिलाफ कोई भी जो है वो हरासमेंट नहीं की जा रही है। एक क्वेश्चनेयर जो था आईटीवी ने वो आज इंग्लैंड से इमरान खान साहब को भेजा था जिसके कि फिर रिटन रिस्पॉन्सेज जो थे वो इमरान खान साहब ने आईटीवी को भेजे हैं और उसमें उन्होंने कहा है जी कि स्टार्मर साहब जो हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स ऑफ पीस फ्रीडम और फेयरनेस के लिए खड़ी रहे और यूके का कमिटमेंट होना चाहिए कि वो ये जो वैल्यूज हैं डेमोक्रेटिक उनको ग्लोबल स्टेज पे अपहोल्ड वो करे। तो उनका जो है यूके का बड़ा मेन रोल है इसके अंदर तो वो पैदा इसको करना चाहिए। तो ये जो इंटरव्यू इन्होंने आईटीवी के साथ किया है इसको काफी जो है वो मिल रही है क्योंकि इसके छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं आप देखेंगे सोशल मीडिया पे काफी जो हैं वो किए गए हैं वायरल। तो पूरा इंटरव्यू भी आप इनकी आईटीवी की साइट जो है उस पर जाके आप देख सकते हैं। पीटीआई ने अनाउंस किया जी कि हम अगस्त 22 को अब करेंगे एक रैली लेकिन इसके ऊपर जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अताउल्ला तारर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि पार्टी को परमिशन मिलेगी। एक टीवी के शो में बैठते हुए उन्होंने कहा जी कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है पीटीआई का उसके पीछे तो मुझे लगता है कि इनको इजाजत नहीं मिलेगी लेकिन पीटीआई के जो लीडर हैं शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने कहा कि नहीं थर्सडे के दिन हम बिल्कुल रैली करेंगे चाहे वेदर इट रेन्स और शाइन्स। और इसके साथ साथ जो एडवाइजर हैं टू केपी चीफ मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ उन्होंने भी कहा जी कि इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इस्लामाबाद में अगस्त 22 को करेंगे और कोई भी रैली करेंगे और कोई भी लॉ का वायलेशन नहीं करेंगे। तार साहब ने कहा जी कि पीटीआई वाले कभी भी पीसफुल जो है रैलीज नहीं निकालते हैं और वो हमेशा यही कहते हैं कि हम पीसफुल रहेंगे, लेकिन फॉर्मर केपीपी के जो चीफ मिनिस्टर थे परवेज खटक साहब वो तो सोटियों के साथ और मॉडर्न बड़ा इक्विपमेंट लेकर यहां पे आ गए थे। उन्होंने कहा जी कि जेआई ने अभी सिट इन किया था हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अगेंस्ट, लेकिन वो बहुत पीसफुल था, लेकिन फिर भी उनको इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने दिया गया था। उन्होंने कहा जी कि केपी गवर्नमेंट जो है उसको मैं मशवरा देता हूं कि आप एजुकेशन पे, हेल्थ पे और एंटी टेररिज्म के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करें, इन चीजों पर ना करें। इसके ऊपर बात करते हुए मरवत साहब ने कहा कि कोई हमें स्टॉप नहीं कर सकता है, केपी से ये जो कैरावान निकलेगा ये बहुत ही अजीम शान होगा और इसको अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो भी ये नहीं रुकेगा। और हम आर्म्स ना तो पेट्रोल बॉम्ब कुछ भी, हम कोई आर्म्स जो है या एम्यूनिशन कैरी नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल पीसफुल रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने वायलेंस और फायरिंग की तो फिर सारा पाकिस्तान जो है इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। आईएसपीआर की एक खबर आई है जी और इसके मुताबिक पाकिस्तान ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है सरफेस टू सरफेस शाहीन टू बुलिस्टिक मिसाइल, और इसका लॉन्च जो था आज विटनेस किया सीनियर ऑफिसर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड साइंटिस्ट इंजीनियर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स कमीशन जो है उन्होंने बड़ी तारीफ की पाकिस्तान के साइंटिस्ट और उनके इंजीनियर्स की फॉर दिस टेक्निकल प्रोवेस और उनकी डेडिकेशन। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, तीनों जो सर्विसेज के चीफ्स हैं उन्होंने मुबारकबाद दी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को। लास्ट मंथ भी पाकिस्तान नेवी ने सक्सेसफुल लाइव फायर किया था FN6 सरफेस टू एयर मिसल का कराची के अंदर। है भाई आमिर, बड़ी जो है वो असले में बड़े आगे आगे चल रहा है पाकिस्तान। क्या ख्याल है आपकी, क्या टिप्पणी है इसके ऊपर?
जरूरी है, देखिए पावर शो भी जरूरी है,
पावर शो हाँ जरूरी,
बहुत जरूरी है।
हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा भी ना समझे ना पाकिस्तान को कि बिल्कुल ही मरा बैठा हुआ है।
नहीं नहीं, मरे तो कभी भी नहीं थे।
हाँ,
लेकिन दुनिया भर में आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम लिसनर्स को याद है, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्कैम है ना वो टेररिज्म है, तो उसके लिए आपको वेपन चाहिए, फिर
चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली,
और जिसका काबू करने के लिए।
हाँ नहीं नहीं, और जो कुछ हमारे मुल्क में, भाई हमारे बच्चों तक को आके मार गए हैं वो लोग, तो हमने फिर उनके खिलाफ नहीं लड़ना, लड़ना है ना। हाँ तो उसके लिए चाहिए ना फिर मसला, ठीक है। अच्छा जनाब, ये जैसे सारी दुनिया के अंदर एमपॉक्स फैल रहा है तो उसके अंदर फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त गाइडलाइंस दे दी हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स के ऊपर स्क्रीनिंग, आइसोलेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लिए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत तेजी से चीज फैल रही है, तो इसलिए हमारे लिए एसेंशियल है कि हम ये एसओपीज जो है उनको इन प्लेस करें। उन्होंने कहा कि जितने भी पैसेंजर्स आएंगे उनको स्क्रीन किया जाएगा, क्रू मेंबर्स जो है उनको भी स्क्रीन किया जाएगा। उन्होंने कहा जी कि ये जो वीजा ऑन अराइवल का जो इशू है ये उसी वक्त उनको दिया जाएगा अगर वो हेल्थ की जो है क्लियरेंस हमको देंगे कि वो फिट हैं टू एंटर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अभी तक एक एमपॉक्स का केस आया है, अलबत्ता WHO ने इनको कहा है कि चूंकि इंडिया में बहुत तेजी से ये फैल रहा है तो इसलिए सावधान रहो, ऐसे है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज हुआ बड़ा एक मजे की आज खबर आई हिंदुस्तान से, और फिर वही दिल किया कि हम या तो मुंह नोच लें या सर तोड़ लें या क्या करें, है ना जी। जैसे आमिर ने भी कहा, कुछ जर्नलिस्ट खराब हैं, यानी कि हर कोई खराब नहीं है, इंक्लूडिंग आमिर। नहीं, आमिर भी अच्छा है, है जी, तो आमिर भी अच्छा है।
नहीं, जर्नलिस्ट नहीं हूं ना।
इसीलिए अच्छे हो। तो जैसे आमिर ने कहा कुछ जर्नलिस्ट, तो बिल्कुल यही बात है कि कुछ जर्नलिस्ट, मैंने तो आपको बड़ी दफा एग्जांपल दी है रवीश कुमार साहब की, हालांकि उनको NDTV से निकलने का कहा भी नहीं था किसी ने, और इतना हाईएस्ट पेड वो जर्नलिस्ट था, लेकिन जिस दिन उनको पता चला कि गौतम अदानी साहब ने NDTV का टेक ओवर कर लिया है, उन्होंने खुद ही अंडर मॉरल ग्राउंड्स छोड़ दिया अपने सारे प्रिविलेजेस, अपने पैसे, अपनी सैलरी वो छोड़ दी। उन्होंने कहा जी कि मैं उनके अंडर अब, अगर मुझे ये, हालांकि उन्होंने छेड़ा ही नहीं, गौतम अदानी ने भी इनको नहीं छेड़ा था, ना मैनेजमेंट ने इनको कहा था, क्योंकि ये आपको पता है ये बहुत ही मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, फिर भी इनको किसी ने नहीं कहा था कि तुम जाओ, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों के खिलाफ मैं बोलता रहा उनकी मैनेजमेंट के अंदर मैं काम कैसे करूंगा। तो उन्होंने, तो इस तरह के और भी बहुत सारे दुनिया में जर्नलिस्ट हैं, और इंडिया में तो जो दो चार मुझे भी पता है वो ऐसे हैं। अच्छा, उनमें से एक जनाब करण थापर साहब हैं। कल आपको बताया कि पाकिस्तान में बड़ा जी एक मुद्दा गर्म किया गया था कि रऊफ हसन जो है वो और PTI इंडिया से पैसे लेते हैं, एंटी पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। उसके ऊपर आज जो मीडिया है उसने करण थापर साहब से बात की और थापर साहब को इस बात पे बड़ी हंसी आई और उन्होंने कहा कि ये एलिगेशंस आर एब्सोल्यूटली एब्सर्ड। करण थापर साहब ने कहा जी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये रैशनैलिटी इन्होंने कैसे डेवलप की है कि मैं जो हूं कोई इंडियन लॉबी से मेरा ताल्लुक है और अगर इसका मेरे से कोई इंटरव्यू मैंने लिया इसका रऊफ हसन का तो मैंने इसको कोई एंटी इंडिया कोई जो है ये एंटी सॉरी पाकिस्तान जो है वो हमने बातें कोई डिस्कस की हैं। वो थापर साहब ने कहा कि मैं एक मशहूर तरीन टीवी एंकर और कॉलमिस्ट हूं फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स यूके में भी और इंडिया में भी उनके साथ मैंने काम किया है। 2017 में जो इन्होंने इंटरव्यू अपने होस्ट किए थे द वायर के लिए यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, उसके अंदर उन्होंने वो कहते हैं जी मैंने बेशुमार इंडिया पाकिस्तान इजराइल ईरान यूके यूएस दुनिया सारी के हिस्सों से मैंने रेंज ऑफ इंटरव्यूज जो हैं वो किए हैं और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है अलबत्ता बहुत ज्यादा इनको नापसंद करती है, बल्कि बीजेपी की गवर्नमेंट अलेजली इनको कहती है अपने मिनिस्टर्स को कि बिल्कुल करण थापर के शो में मत जाना और अवॉइड करो इसके शो में आने के लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट और क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछता है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब इनको प्रॉक्सी का ऑफ इंडियन एस्टैब्लिशमेंट तो ये बहुत हंसे। इन्होंने कहा जी कि हसन साहब जो हैं जो ये कहा गया था कि ये और पीटीआई एंटी पाकिस्तान कैंपेन रन कर रहे हैं अलोंग विद एंटी नेशनल फोर्सेस, तो मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इन फोर्सेस के साथ। उन्होंने कहा जी कि ये जो मेरा इंटरव्यू मैंने इनका रिकॉर्ड किया था जूम पे ऑन May 10, 2023 यानी लास्ट ईयर इन्होंने ये इंटरव्यू जो किया था और उसमें जो पाकिस्तान की अब गवर्नमेंट कह रही है रिलायबल सोर्सेज, क्योंकि जो है ना हमारे अताउल्ला तारड़ साहब वो तो माशाल्लाह बड़े इंटेलेक्चुअल है ना आपको पता ही है, तो उन्होंने कल ये लैंग्वेज यूज की थी कि रिलायबल सोर्सेज से हमें पता चला है कि ये बड़ा एंटी पाकिस्तान है और एंटी नेशनल फोर्सेज के साथ काम कर रहा है। तो करण थापर साहब बड़े हंसे, उन्होंने कहा ये रिलायबल सोर्सेज से उनको फाइंड आउट करने की क्या जरूरत थी, मेरा इंटरव्यू तो एक सिंपल गूगल सर्च में ही इनको मिल जाता। तो मुझे नहीं समझ आ रही इन्होंने ऐसा क्यों किया, मे बी ये जो रीडर्स हैं उनको कंफ्यूज करना चाहते थे। वायर का जो यूट्यूब का ये जो चैनल था करण थापर साहब का जो इनके साथ रऊफ हसन साहब के साथ था, फिर वायर ने बैक टू बैक दो इंटरव्यूज लिए थे करण थापर साहब ने, एक रऊफ हसन का और एक हामिद मीर का May 10 पे, वो दोनों के दोनों इन्होंने फिर से अपलोड कर दिए। मैंने भी आपको कल बताया था क्योंकि द वायर और द प्रिंट को मैं बहुत फॉलो करती हूं, ना सिर्फ हामिद मीर साहब बल्कि जो है रऊफ हसन, बल्कि मैंने आपको बताया था कि जो है नजम सेठी साहब वो भी इनके साथ बहुत रेगुलरली करते हैं। तो बहरहाल इन्होंने ये दो इंटरव्यूज जो थे हामिद मीर और रऊफ हसन का ये इन्होंने फिर से जो है अपलोड किया है और उन्होंने आज करण थापर साहब ने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है रऊफ हसन साहब के साथ, मैं तो ये क्लेम ही नहीं कर सकता कि ये मेरा दोस्त है, मैंने तो कोई एक दो इसको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे होंगे फॉर इंटरव्यू, जिसका कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि व्हाट्सएप मैसेजेस की हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। वो कहती है मैं तो उनकी डिटेल्स रखता भी नहीं हूं, मैं तो इंटरव्यू के बाद उनको डिलीट भी कर देता हूं, मैं तो उनसे सिर्फ इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करता हूं और अगर कोई आ जाता है तो विच इज गुड इनफ, तो मेरा ये कोई दोस्त वोस्त नहीं है, मैंने तो खाली इनका एक दफा इंटरव्यू लिया है, मुझे नहीं लगता कि मैं इनको कोई जानता भी हूं या बड़ी दफा मैंने इनसे कोई बात भी किया, तो ये कह देना कि ये मेरे दोस्त हैं एक बहुत बड़ी एग्जैजरेशन है। और वो कहते हैं जी कि ये उस दिन मेरे ऊपर यानी कि जो कल एलिगेशंस लगाए थे अताउल्ला तारड़ साहब ने इन पे, उन्होंने कहा जी ये उन्होंने उस दिन मेरे पे लगाए हैं ये एलिगेशंस जिस दिन हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर जो मेरा आर्टिकल आया है जिसके के लिए मुझे कहा गया है कि तुम प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हो। और वो कहते हैं जी कि आपको अगर याद होगा कि 2007 में जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने उनसे जब इंटरव्यू लिया और मैंने उनको डायरेक्टली कहा कि आप इन्वॉल्व हैं मुसलमानों के वहां पे अलेजली मर्डर के अंदर, तो मोदी जी को इतना गुस्सा आया था कि वो अपना माइक वाइक फेंक के मेरे मुंह पे, वो तो इंटरव्यू के बीच में से उठ के चले गए थे। तो मेरे जैसे आदमी को कह देना कि ये जी एंटी नेशनल फोर्सेज हैं और इनके साथ ये लोग काम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी मुझे आज बड़ी हंसी आई इनका ये स्टेटमेंट जो है वो देख के, क्योंकि मुझे तो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया कहा जाता है, तो पता नहीं इनको ये आइडिया कहां से आया। तो बहरहाल उन्होंने बड़ा एतराज किया है, विच इज सच अ शेम माई गॉड रियली। और जनाब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ठनी हुई है, कांग्रेस ने आज जो है बड़ा ये कहा है कि जो वो हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके साथ हम अलायंस बना सकते हैं, लेकिन ये पैरामीटर्स जो इस अलायंस के होंगे वो डिफरेंट होंगे जो कि लोकसभा इलेक्शंस में हुए थे। कि उसकी वजह यह है, ये बयान आज इसलिए आया है कांग्रेस की तरफ से क्योंकि जम्मू और कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं। पार्टी के जो न्यूली इलेक्टेड जम्मू एंड कश्मीर यूनिट के जो चीफ हैं तारिक हमीद कारा साहब, उन्होंने कहा जी कि गुलाम नबी आजाद की जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है उसके साथ लोग नहीं खड़े रहेंगे। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है क्योंकि ये इन्होंने जो कांग्रेस के साथ जो थी अलायंस बनाई जो थी वो तोड़ दी थी। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम यह होगा कि हम जो है वो रिस्टोर करें आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्यादती और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है कि इसको स्टेट से यूनियन टेरिटोरी बनाया गया है। करा साहब जो है उन्होंने रिप्लेस किया था विकार रसूल वानी साहब को भी थोड़े दिन पहले जब इलेक्शंस हुए थे कांग्रेस पार्टी के यहां पे, और अब ये कांग्रेस के हेड हैं जम्मू और कश्मीर में। उन्होंने कहा जी कि हम बीजेपी की हेजमोनिस्टिक जो अप्रोच है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मुझे दिल्ली की जो लीडरशिप है उधर से अश्योरेंस दी गई है कि अगर हम कोई रिस्पेक्टेबल फैमिलीज के पार्टीज के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी जो है उन्होंने बेतहाशा आज राहुल गांधी जी जो है उनके ऊपर एतराज किए क्योंकि उन्होंने जो कोलकाता में जो डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हुआ था उसके ऊपर कमेंट करने से रिफ्यूज किया, जिसके ऊपर बीजेपी ने कहा कि दिस इज इंसल्ट टू विक्टिम एंड ऑल वुमेन इन इंडिया। गांधी जी जो हैं वो यूपी के रायबरेली में गए हुए थे और वहां पे जो एक दलित आदमी है 22 इयर्स का उसकी फैमिली से, क्योंकि उसको सलोन के ओरिए में उस वक्त गोली मार के मार दिया गया था जब वो कमेंट दे रहा था इसी केस के ऊपर, कोलकाता डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के ऊपर। तो गांधी जी जो हैं वो गए हुए थे इस दलित फैमिली से मिलने के लिए, और जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि इस वक्त तो मैं इस फैमिली के साथ बैठा हुआ हूं और मैं इस जो दलित बच्चा है उसके केस के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं, तो इसलिए आप मुझे मत पूछें। तो उसका फिर अब मुद्दा जो है वो फिर अब बीजेपी ने बना लिया है। और जनाब हमारे जॉनी डेप साहब मूवी बना रहे हैं मोदी,